नमस्कार भारत, तारीख 9 जून दिन मंगलवार, मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। नेपाल में संविधान को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों में हुआ ऐतिहासिक समझौता। उधर बराक ओबामा ने माना इराक को लेकर एक संपूर्ण नीति का अभी भी है अभाव।
Where we're going to have to improve is the speed at which we're training Iraqi forces. Where we've trained Iraqi forces directly and equipped them.
नरेंद्र मोदी की वतन वापसी पर साथ लौटा एक विवाद भी, और राजस्थान के डांगावास से निकलकर आ रही है जातीय हिंसा की दर्दनाक तस्वीर।
300 आदमी है, ध्यान नहीं पड़ी माना दाता पानी के डेढ़ मारो रंडा ने मारो इन्हें दाता पानी माने तो।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, फैसल महमूद अली से। नेपाल के मुख्य राजनीतिक दलों ने तय किया है कि नए संविधान के अंदर मुल्क में संघीय व्यवस्था लागू की जाएगी और देश को 8 प्रांतों में बांटा जाएगा। नए सूबों की सीमा तय करने के लिए एक संघीय समिति का गठन होगा, जिसके लिए ये सभी दल तैयार हो गए हैं। ये संधि नेपाल में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर देने वाले माओवादी लड़ाई के खात्मे के तकरीबन 10 साल के बाद की गई है। जर्मनी में जारी G7 समूहों के देशों ने कहा है कि साल 2050 तक विद्युत की आपूर्ति के लिए या तो अक्षय या परमाणु ऊर्जा तक को ही मुख्य स्रोत बना लिया जाएगा। ऐसा करना ग्रीन हाउस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में कटौती करने के लिए तैयार की गई योजना का हिस्सा है। इन देशों ने तय किया है कि सदी के अंत तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए। यह भी तय हुआ है कि गरीब देशों को स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के लिए जिन तकनीकों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें अमीर देश उनकी मदद करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा, हम इस बात को पक्का करना चाहते हैं कि हम विकास के उन तरीकों को अपनाएं जिसमें सामान्य तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम स्तर पर रहे। दूसरे शब्दों में 2 डिग्री पाने के लक्ष्य पर हमारी वचनबद्धता साफ होनी होगी। जर्मनी के चांसलर के शब्द। इस्लामिक स्टेट ने इराक के शहर मोसूल में सरकारी हमलों से बचने के लिए धोखे से फट जाने वाले बम, खुफिया भूमिगत रास्तों और दूसरी रुकावटें पैदा कर रखी हैं। बीबीसी की एक जांच में पता चला है कि शहर पर कब्जे के साल भर के दौरान चरमपंथी संगठन ने नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इनमें लिबास से लेकर स्कूल तक शामिल हैं। लोगों का कहना है कि स्कूलों का इस्तेमाल बच्चों के जहन को आईएस के हिसाब से ढालने के लिए किया जा रहा है, जबकि मोबाइल के सिग्नल काट दिए गए हैं और खबरों पर उनका पूरी तरह से कब्जा है। शहर की सबसे बड़ी मस्जिद की रूपरेखा बदल दी गई है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी बांग्लादेश के शहर सिलहट में पुलिस का कहना है कि उसने एक ब्लॉगर की हत्या के सिलसिले में एक स्थानीय फोटो जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया है। फरवरी से लेकर अब तक मारे जाने वाले 3 ब्लॉगरों में अनंत विजय दास भी शामिल थे, 4 ब्लॉगर में। सिलहट में 4 व्यक्तियों ने तब उनकी हत्या कर दी थी जब वो काम पर जा रहे थे। जिस शख्स को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया उसका नाम इद्रीस अली बताया जा रहा है और वो एक नेशनल और एक स्थानीय अखबार के लिए काम किया करता था। पुलिस को शक है कि विजय दास की हत्या इस्लामी चरमपंथियों ने की थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं, और एक लंबे अरसे बाद आज आपके साथ हूं मैं नितिन श्रीवास्तव। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के पड़ोसी देश नेपाल से। कल देर रात हुए एक ऐतिहासिक समझौते के तहत नेपाल की चारों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने देश के भावी संविधान पर पहली बार सहमति जताई। सभी नेताओं ने देश में एक संघीय व्यवस्था स्थापित किए जाने पर अपनी मंजूरी भी दे दी है। यानी वर्षों से चली आ रही राजनीतिक खींचतान और असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो सकेगी। पूरी जानकारी के साथ फैसल मोहम्मद अली।
नेपाल में आए भयंकर भूकंप के लगभग 6 हफ्ते बाद 4 मुख्य राजनीतिक दलों के बीच संविधान निर्माण को लेकर कल एक समझौता हुआ। जिन 16 बिंदुओं पर समझौता हुआ है उसके संधि पत्र पर नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML ने दस्तखत किए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने भी बहुत सारे मामलों में अपनी सहमति जताई है। इन राजनीतिक दलों ने तय किया है कि मुल्क को 8 सूबों में बांटा जाएगा और नए संविधान को कुछ माह के अंदर ही लागू कर दिया जाएगा। पिछले संविधान सभा को 2 साल पहले भंग कर दिया गया था। दलों में यह भी तय हुआ है कि नए संविधान के लागू होने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। समझा जा रहा है कि नए संविधान के लागू होने के बाद एक मिलीजुली सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन कुछ छोटे राजनीतिक दलों ने संधि का ये कहते हुए विरोध किया है कि माओवादी पार्टी सरकार में शामिल होने की लालच में शासक वर्ग से जा मिली है। आलोचकों का मानना है कि संविधान निर्माण का काम लोगों का ध्यान भूकंप प्रभावितों से हटा देगा, जिनमें से अभी भी बहुत सारे अस्थायी कैंपों में जिंदगी बिता रहे हैं। अप्रैल में आए जलजले में कम से कम 8,000 लोगों की मौत हो गई थी।
राजनीतिक असमंजस भले ही कम होगा नेपाल में, लेकिन अभी भी बड़े राजनीतिक दल 8 प्रांतों के नाम और संघीय व्यवस्था के ढांचे को लेकर एकमत नहीं दिख रहे हैं। वैसे भी वर्षों से संविधान के स्वरूप को लेकर अलग थलग सी राय रही है नेपाल में, तो क्या आप चिंताएं खत्म समझी जाएं? यही सवाल किया मैंने काठमांडू में हुई इस बैठक के बाहर मौजूद रहे BBC नेपाली सेवा के सहयोगी फणीन्द्र दहाल से।
इसमें चुनौती तो काफी है, क्योंकि आज जब ये डील होने की बात आई तो प्रचंड के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चा है, उसमें 30 दल है, उनमें से कई दल ने अपोज किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फेडरलिज्म को डील में ही मेंशन करना चाहिए, इस इश्यू को उधार का समझौता वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काफी डिसकंटेंट है, मगर पार्टीज ने एक डील करी है और वो चाहते हैं कि वो संविधान तुरंत लाएं, और इन दलों जिसने आज सहमति किया है उनके पास 2/3 है जो नेपाल को कॉन्स्टिट्यूशन जारी करने के लिए आवश्यक वोट संख्या है।
ये जो नया समझौता बना है इसके हिसाब से अगर देखें तो जो 60% लॉ मेकर्स होंगे, कानून बनाने वाले लोग होंगे, वो तो पहले जीतेंगे वो जीत जाएंगे, और उसके बाद जो 40% बचेंगे वो एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया के तहत होंगे कि जिन पे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग किस्म से वोट देंगे, उसके बाद सब मिला के मिश्रण और समीकरण देखा जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि नेपाल की राजनीति में, नेपाल की चुनावी प्रणाली में ये सफल होगा?
उसमें भी काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी नेपाल में 240 निर्वाचन सीट के लिए इलेक्शन हुए थे पिछले संविधान सभा चुनाव में, मगर पार्टीज ने इस बिल में क्या कमिट किया है कि वो 65 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, इसको लेकर भी विरोध आ सकती है, मगर पार्टीज ने कमिट किया है कि वो 1-10 सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से इलेक्ट करेंगे, ताकि जो संसद बनेगा इस संविधान जारी होने के बाद वो इंक्लूसिव होगा जो जब चुनाव होगा। फिलहाल कुछ समय तक ये संविधान सभा का आयु 4 वर्ष का है, ये पार्लियामेंट के कंटिन्यू करेगा संविधान जारी होने के बाद भी।
ये थे काठमांडू से BBC नेपाली सेवा के फणीन्द्र दहाल। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट से जारी जंग में इराक की मदद के लिए अमरीका के पास अभी भी एक संपूर्ण नीति तैयार नहीं है। G7 देशों के सम्मेलन के दौरान बराक ओबामा इराक की उस मुहिम का जिक्र कर रहे थे जिसके तहत इराकी सेना IS के कब्जे में गए अपने इलाकों को वापस लेने में प्रयासरत है। उन्होंने कहा,
Where we're going to have to improve is the speed at which we're training Iraqi forces. Where we've trained Iraqi forces directly.
हमारे पास अभी भी एक संपूर्ण नीति नहीं है, क्योंकि उसके लिए इराक की तरफ से भी सैनिकों को भर्ती और उनकी ट्रेनिंग पर पुख्ता वादे चाहिए होंगे। बराक ओबामा के शब्द। ओबामा के इस तरह के बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब इराक के मामले में अमरीकी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल सकता है क्या? इस सवाल के जवाब के लिए मैंने कुछ देर पहले वॉशिंगटन में अपने सहयोगी ब्रिजेश उपाध्याय से बात की।
देखिए नितिन, बदलाव की तो नहीं, लेकिन एक तरह की प्रशिक्षण में तेजी लाने की तरफ इशारा कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास ISIS के खिलाफ एक संपूर्ण रणनीति नहीं है इस वक्त, क्योंकि इसमें इराकियों की तरफ से भी एक कमिटमेंट की जरूरत है, खासतौर से नए सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण को लेकर, और उस पर प्रधानमंत्री हैदर अलाबादी के साथ बात हो रही है। और उन्होंने ये कहा है कि जरूरत इस बात की है कि सुन्नी मुसलमानों को भी आईसिस के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से शामिल किया जाए। दरअसल आपको याद होगा, ओबामा शुरू से कहते रहे हैं कि आईसिस के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी तभी मिलेगी जब इराक एकजुट होकर लड़ेगा, लेकिन अगर ये लड़ाई शिया सुन्नी लड़ाई बनकर रह जाती है तो जाहिर है कि इराक के सुन्नी अल्पसंख्यक एक सुन्नी संगठन आईसिस के खिलाफ पूरी तरह से नहीं खड़े होंगे। और ऐसे में जो अनबार जैसे इलाके हैं जहां सुन्नियों की बहुतायत है, वहां से आईसिस को भगाना मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि ओबामा की सोच ये रही है कि ये जंग इराकियों की है और अमरीका उन्हें हथियार मुहैया करवाएगा, ट्रेनिंग देगा और हवाई मदद देगा, लेकिन इराक में अमरीकी फौज, जिसे हम बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी जमीनी लड़ाई में, वो नहीं हिस्सा लेंगे।
जी, अभी आपने अनबार का जिक्र किया, उससे जुड़ा मेरा सवाल ये है कि जो इस्लामिक स्टेट है उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अनबार समेत रमादी और सीरिया के तमाम ऐसे इलाकों पर कब्जा किया है और एक तरह से मजबूत दिख रहे हैं वो मैदान में, तो क्या अमेरिका की तरफ से चिंता जो है वो जाहिर होने लगी है खुद ओबामा के बयान में, या क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, राष्ट्रपति ओबामा ने और यहाँ भी अधिकारियों ने ये माना है कि आईसिस के खिलाफ चल रही मुहिम को धक्का पहुंचा है, खासतौर से रमादी जो अनबार की राजधानी है उस पर आईसिस के कब्जे के बाद, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये अस्थाई है, थोड़े समय के लिए है, और इसकी मुख्य वजह है प्रशिक्षण में कमी। और उन्होंने कहा है कि वहां मौजूद 3,000 अमरीकी प्रशिक्षकों को कई बार ऐसा लगा है कि प्रशिक्षण क्षमता प्रशिक्षण लेने वालों से ज्यादा है।
ब्रिजेश, पिछले साल भी अगस्त महीने के आसपास अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान आए थे कि अभी एक रणनीति तैयार नहीं हो सकी है इस्लामिक स्टेट से निपटने की, और अब फिर ओबामा ने जो है एक संपूर्ण रणनीति की बात कही है। आखिर राजनीतिक स्तर पर ये चल क्या रहा है अमेरिका की राजनीति में इस्लामिक स्टेट से निपटने को या उनसे लोहा लेने को लेकर?
देखिए, आईसिस के खिलाफ और पूरे मध्य पूर्व में ओबामा की जो विदेश नीति है उसकी काफी आलोचना हुई है, खासतौर से रिपब्लिकन्स की तरफ से, और आज के इस बयान पर भी आलोचना शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि क्या वो अमरीकी फौज को इराकी जमीन पर भेजने के हक में है। ओबामा, आपको याद होगा, एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट के तौर पर जीत कर आए और अमरीकी जनता में भी इन दिनों युद्ध को लेकर एक कोई उत्साह हो ऐसा नहीं है। ऐसे में आईसिस जैसी ताकत के खिलाफ कारगर नीति क्या होगी, इस पर कोई फॉर्मूला सामने कोई भी नहीं रख रहा है।
अमरीकी विदेश नीति पर ये थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। अब लौटते हैं भारत, जहां अपनी बांग्लादेश यात्रा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट चुके हैं, लेकिन वहां दिए अपने आखिरी भाषण से शुरू हुए विवाद ने उनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सराहना तो की, लेकिन उनके शब्दों के चयन को कई लोगों ने महिला विरोधी समझा और सोशल मीडिया वेबसाइट्स और पर कमेंट्स की जैसे झड़ी सी लग गई। पूरे विवाद के ब्यौरे के साथ दिव्या आर्य।
लेडीज एंड जेंटलमैन, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।
बांग्लादेश के बंगा बंधु कन्वेंशन सेंटर में ढाका विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब एक घंटे भाषण दिया, पर उनकी एक बात थी जिसने सबका ध्यान खींचा।
टेररिज्म से कैसे निपटना, अभी तक दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि रास्ते क्या हो, और यूएन भी गाइड नहीं कर पा रहा है। मुझे खुशी की बात है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी डंके की चोट पर कह रही है कि टेररिज्म के संबंध में मेरा जीरो टॉलरेंस है।
बांग्लादेश में भाषण सुनने वालों ने तो तालियां पीटी, पर यहां भारत में आलोचनाओं का अंबार टूट पड़ा। आपत्ति थी प्रधानमंत्री की एक बात से कि महिला होने के बावजूद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर कड़ा रवैया रखा। महिला होने के बावजूद सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर लोगों ने #despitebeingawoman के साथ अपनी बात साफ की। कुछ ट्वीट्स सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे थे। अर्पिता दास ने लिखा,
तो क्या प्रधानमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाएं ज्यादातर आतंकवाद को बर्दाश्त करती हैं?
एक महिला कोमल ने तो इसे प्रधानमंत्री मोदी की निजी जिंदगी से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया,
#despitebeingaman यानी आदमी होने के बावजूद मोदी जी ने अपनी पत्नी को तकलीफ में छोड़ दिया, और वो #despitebeingawoman यानी औरत होने के बावजूद अपने हकों के लिए लड़ रही हैं।
कुछ ने इस मौके को महिलाओं से जुड़ी भ्रांतियों पर टिप्पणी के लिए इस्तेमाल किया। कनिका कुमार ने औरतों की पसंद को अलग खांचे में डालने के विरोध में ट्वीट किया,
मैं औरत होने के बावजूद राजनीति के बारे में ट्वीट कर रही हूँ #despitebeingawoman।
गायत्री जयरमन ने #hashtag के बहाने महिलाओं की नौकरी और घर के काम की दोहरी जिम्मेदारी को उभारा।
खाना बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने, बाजार से सामान लाने के बाद अब मैं काम पर चली, हर आम औरत की तरह जिन्हें मैं जानती हूँ #despitebeingawoman।
राजनेता और राजनयिक भी पीछे नहीं रहे। भारत में अफगानिस्तान के एक कूटनयिक एम अशरफ हैदरी ने ट्वीट किया,
#despitebeingawoman हमें अफगान महिलाओं की भी याद दिलाता है जो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ रोज चरमपंथ और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ रही हैं।
वहीं भारत प्रशासित कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना ही मजाक बनाते हुए ट्वीट किया,
#despitebeingaman यानी आदमी होने के बावजूद मैं इस #despitebeingawoman की तंज भरी आलोचना नहीं सोच पा रहा हूँ।
इन सब ट्वीट्स के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो प्रधानमंत्री के बचाव में लिख रहे थे। तुषार कुंदेर ने कहा,
भारत के सभी महिलावादी लोग मोदी की #despitebeingawoman टिप्पणी से आहत हो रही हैं। उन्होंने किस मकसद और किस संदर्भ में ये कहा, उसे समझिए।
गौतम ने अपने ट्वीट में कहा कि संदर्भ पर भी जोर देना चाहिए।
#despitebeingawoman पर इतना हंगामा क्यों है? एक प्रधानमंत्री इस बात को मान रहे हैं कि महिलाओं के लिए यह करना मुश्किल है, और जो महिला इसके बावजूद ये सब कर पाई है उनकी सराहना कर रहे हैं।
बहरहाल #despitebeingawoman कई घंटों तक ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, और इंटरनेट की दुनिया में ही सही महिलाओं के प्रति पुराने रवैयों पर फिर बहस छिड़ गई। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
सोशल मीडिया और उसके बदलते हुए आयाम। बहरहाल आइए अब आपको ब्रिटेन ले चलते हैं, जहां धार्मिक स्वतंत्रता सबका मानवाधिकार है, लेकिन अपने पारिवारिक धर्म को छोड़ने का मतलब वहां भी अकेलापन और अलग थलग होना हो जाता है। 19 साल की एक युवती सारा ने BBC के न्यूज बीट कार्यक्रम से बात की और ये बताया कि उन्होंने 2 साल पहले अपने माँ बाप को कहा था कि वो अब मुसलमान नहीं रहना चाहती। सुनिए दिलनवाज पाशा से।
Hi, I'm Sarah. I'm 19 years old and I'm an ex-Muslim.
19 साल की सारा पहले मुसलमान थी, अब उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया है। वे खुद को एक्स मुस्लिम कहती हैं। वह बताती हैं कि उस वक्त वह 17 साल की थीं जब उन्होंने अपने परिवार को कहा कि वो मुसलमान नहीं रहना चाहती। तब उनके परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया था।
You could disappear for 2 years. No one would say anything.
उन्हें पता चला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें गायब करवा देंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा, कम से कम परिवार में तो नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, अपने आप से झूठ बोलकर नहीं रह सकती।
उम्र बढ़ने के साथ सारा को महसूस होने लगा था कि उनकी विचारधारा के साथ इस्लाम जुड़ता नहीं है, लेकिन वह अरबी सीखने और दुआ करने के बारे में सच को छुपाती रहीं, पर फिर ये मुश्किल हो गया।
Very seriously considered suicide.
एक वक्त आया जब मैंने बहुत संजीदगी से खुदकुशी करने की बात सोची। यकीनन मुझे अपराध बोध होता है, पर ज्यादातर लोग अपने परिवार को कुछ नहीं बताते, घुटते रहते हैं और उससे कुछ हासिल नहीं होता।
कतर और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों में इस्लाम को छोड़ने या फिर धर्म त्यागने का अर्थ होता है मौत की सजा। धर्म छोड़ने वाले लोगों के लिए बना संगठन फेथ टू फेथलेस के मुताबिक लंदन में करीब 200 एक्स मुस्लिम हैं, साथ ही 20 लोग ऐसे हैं जो एक्स क्रिश्चियन, एक्स मॉर्मोन्स या एक्स हिंदू हैं। ब्रिटेन में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले रमादान फाउंडेशन से जुड़े मोहम्मद शफीक कहते हैं कि धर्म छोड़ने के चलन को उन्होंने कई धर्मों में देखा है, पर पिछले कुछ सालों से लोग इस इस्लाम को बदनाम करने का जरिया भी बना रहे हैं।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। फैसल मोहम्मद अली साहब स्टूडियो में अपनी ढीली तबीयत के बावजूद अखबारों के पुलिंदे के साथ। फैसल साहब,
नीतीश, जो सबसे अहम खबर जो दिख रही है मुझे हिंदुस्तान में, नितिन माफ कीजिएगा, नीतीश यहाँ नजर आ रहे हैं अखबार में हर जगह, तो मेरे
लालू कहीं है कि नहीं?
हाँ, लालू भी हैं, तस्वीर में दिख रहे हैं शरद यादव और मुलायम सिंह के साथ। تو پہلی خبر ہندوستان سے میں پڑھوں گا جس میں کہا گیا ہے کہ نتیش بہار چناؤ میں گٹھ بندھن کے سی ایم امیدوار جو لالو پرساد یادو نے جس کی کل گھوشنا کر دی اور ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ لالو پرساد یادو کی وجہ سے ہی یہ پورو جنتا پریوار جو ہے یہ ساتھ نہیں آ پا رہا ہے
جی
اسی کو جنستا نے کہا کہ نتیش کے نام پر راضی نامہ اور ساتھ میں یہ کہا ہے سب ہیڈ لائن میں کہ ملائم کے دخل کے بعد دور ہوئی گٹھ بندھن کی بادھا لیکن امر اجالا اس میں تھوڑی چاشنی ڈال کے امر اجالا کہہ رہا ہے لالو کی مجبوری کے نیتا نے دی
جی
تو ملائم کی پہل کی بات تو کر رہے ہیں لیکن جنستا نے اس پر یہ کہا ہے کہ آخر کیوں پیا زہر کا گھونٹ کیونکہ لالو پرساد یادو نے کہا کہ جو بی جے پی اور جو سامپردائک طاقتیں ہیں جو کہ جس کا نعرہ لالو پرساد پہلے بھی دیتے رہے ہیں وہ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے جو ہے ان کو سامپردائک طاقتوں کو بہار سے دور رکھنے کے لیے اگر زہر کا گھونٹ بھی پینا پڑے گا تو پئیں گے تو کئی لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ لالو نے ایک طرح سے اشارہ دیا کہ نتیش جو ہے وہ زہر کا گھونٹ ہے
جس کو وہ پی رہے ہیں دھیرے دھیرے
جس کو وہ پینے کو تیار ہیں اسی کو انڈین ایکسپریس کہتا ہے ٹو بلاک بی جے پی لالو چوزز نتیش اوور ایگو یعنی کہ اپنی جو ان کی سیلف ریسپیکٹ یا پرائڈ جو ہے جس کو انہوں نے سیلف ریسپیکٹ تو نہ کہیں ان کا جو اپنا ایک جھوٹا گرو جس کو ایک طرح سے کہتے ہیں انڈین ایکسپریس نے اس پر ایک ایڈیٹوریل لکھا انڈر نتیش اور اس کی سب ہیڈ لائن دی ہے کہ جو اینٹی بی جے پی گروپنگ جو ہوئی ہے اس میں لیڈرشپ کا معاملہ تو سلٹ کیا ہے لیکن یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہی کافی ہوگا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مسلمان ووٹوں کو لبھانے کے لیے یہ دونوں مل کر ساتھ آ رہے ہیں اسی طرح سے بہار میں کوئی اینٹی بی جے پی ووٹ بینک اس سمے اس طرح سے تیار نہیں دکھتا ہے جو ان کے ساتھ چلا جائے گا اور نتن اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر ہے اس کی ایڈیٹوریل میں پڑھ دیتا ہوں اس سے نہیں ایک دوسرا ایڈٹ اس کی جو ایڈٹ ہے جی وہ انڈین ایکسپریس کی وہ یہ ہے کہ یونین ہوم منسٹری نے جو سن ٹی وی ہے جو بیسیکلی
جی 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 جی
دیا ندی مران کے جو پریوار کے لوگ ہیں ان کو ان کی لائسنس جو ہے وہ دینے سے منع کر دیا اور اس پہ کئی سوال اٹھ رہے ہیں ہندو نے اس کو اپنی مکھیہ خبر بنایا
جی
کہ سن ٹی وی نیٹ ورک ان ٹربل ایز سینٹر ڈینائز سیکیورٹی
کل شام کو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر اور تمام جگہوں پر آ رہا تھا کہ ان کے شیئرز بھی بری طریقے سے
ان کے شیئرز کافی بری طریقے سے گرے ہیں قریب قریب 22% گرے ہیں اور یہ 52واں ویک ہے جو کہ اس کے لو میں چلا گیا
بہت بہت شکریہ فیصل صاحب امید ہے آپ نے سن ٹی وی کا شیئر نہیں لیا ہوگا
نہیں
آپ اسٹاک مارکیٹس میں نہیں کھیلتے بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کا
پچھلے مہینے راجستھان کے ڈانگا واس گاؤں میں زمین کو لے کر ہوئی ہنسا میں 5 دلت مارے گئے تھے اور 1 درجن کے قریب گھائل ہوئے تھے ان میں مہیلائیں بھی شامل تھیں جاٹوں کے کتھت دبدبے والے اس گاؤں میں دلت خاموش ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں تک سے نکلنے میں کترا رہے ہیں سنیے ڈانگاواس سے لوٹ کر آئے ہمارے ساتھی زبیر احمد کی ایک وشیش رپورٹ
راجستھان کا ڈانگاواس گاؤں
لگ بھگ 5,000 لوگوں کی ایک بستی ہے اجمیر سے 60 کلومیٹر دور اور میڑتا شہر سے لگا یہ گاؤں پچھلے مہینے دلتوں کی ہتیاؤں کے کارن کافی دنوں تک سرخیوں میں رہا دلتوں کے ہتیا کانڈ کے 2 ہفتے بعد میں ڈانگاواس پہنچا صبح کا سمے تھا گاؤں میں ایک عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی ہاں الگ الگ جگہوں پر کچھ لوگ ایک ساتھ بیٹھے باتیں ضرور کرتے نظر آئے کچھ اور اندر گیا تو گھروں کی ایک قطار کے سامنے ایک خیمے میں 7-8 پولیس والے آرام کر رہے تھے
گڈ آفٹر نون میں دلی سے پترکار ہوں بی بی سی نیوز سے ہاسپٹل سے آیا ہوں جہاں پر جو زخمی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈر سے نہیں جانا چاہ رہے ہیں اپنے گھروں کو واپس کیونکہ انہیں ابھی بھی ڈر ہے کہ ان پہ آکرمن ہو سکتا ہے
یہ اپنا آپ میں محسوس کرتے ہوں گے باقی یہاں ان کے آپس میں کچھ نہیں ہم ان کا کوئی ڈر ہو
اس کے بعد میں گاؤں کے کچھ دلتوں سے ملا ماحول کیسا ہے یہاں پر آپ لوگ ملتے ہیں جاٹ کے جو آپ کی عمر کے لڑکے ہیں
نہیں ملتے ہیں ویسے ماحول خراب بھی ہے دونوں طرف سے
ڈر کا یہ عالم تھا کہ گاؤں کے گھائل دلت اسپتال سے چھٹی ملنے کے باوجود اپنے گھروں کو واپس لوٹنے سے انکار کر رہے تھے تو میں اس سمے اجمیر کے جواہر لال نہرو اسپتال میں ہوں جو ایک سرکاری اسپتال ہے تو یہاں پر کئی زخمی آئے تھے گاؤں سے جب حملہ ہوا تھا ان پہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ
وہاں تو کھیت میں آ بیٹھے کھیت میں بیٹھا روٹ بیٹھ کھاتا ہے گاؤں والا آیا ہم لوگ جاٹ رونگتا پکڑ ٹھیڑی باتاں اونچائی اونچائی پٹکی بے ہوش کر دیا
آٹ فریکچر ہے
تو آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس دن کچھ یاد ہے
300 आदमी है। ध्यान ही नहीं पड़ी माने दाता पानी के ढेर लियन मारो रंडा ने मारो इन्हें दाता पानी माने तो फुल ठोकी मकर बाल पकड़ खींचा मंगा टांगड़ पकड़ मान ठेड़ी खूब डांगड़ियों मान मारिया थी।
सारा झगड़ा 23 बीघा जमीन से शुरू हुआ। जाटों का कहना है कि पिछले 50 सालों से वो इस जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले दलितों ने खेत पर ये कहकर कब्जा कर लिया कि जमीन उनकी है। गांव में इस जमीन को लेकर तनाव बढ़ता गया। दलितों ने कहा कि 14 मई को गांव के जाटों ने उस जमीन पर बैठे 16 दलितों पर हमला कर दिया। इस हमले में दलितों को बेदर्दी से मारा पीटा गया। 2 व्यक्तियों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। जब मैं जाटों से मिला तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये 2 परिवार के बीच जमीन का झगड़ा है, ये दलित समुदाय पर हमला नहीं था, लेकिन बाद में वो खुलने लगे। वो हिंसा सही था कि
नहीं? नहीं, हिंसा तो होनी थी। आपके मकान पे अगर कोई जबरदस्ती कब्जा करेगा आप क्या करोगे? बाहर निकल जाओगे राजी राजी, या जो भी आपको करना है करोगे? आप करना ही पड़ेगा। वो तो
इसका अफसोस है,
अफसोस तो उनको होना चाहिए। गलती उन्होंने की है, शुरुआत उन्होंने की है, फायरिंग पहले उन्होंने की है। जाट समाज को तो मजबूरी में यह काम करना पड़ा।
पुलिस और प्रशासन ने भी कहा ये 2 परिवार के बीच का झगड़ा है, लेकिन मानव अधिकार संस्था PUCL की कविता श्रीवास्तव गांव से लौटने के बाद मुझसे कहती हैं,
देखिए जो दबंग जाति है वहां जाट, उनका सीधा सीधा हमला दलितों के ऊपर हुआ है। असहनीय हो गया था जाटों को कि दलितों ने अपनी जमीन जो 64 में 1500 रुपए के लिए गिरवी रखी थी और दोबारा से दलित उसको क्लेम करने आ गए थे, सारे कागज दलितों के ही नाम पे बोल रहे थे। तो ये तो सीधा सीधा हमला किया गया है सबक सिखाने के लिए उस पूरे इलाके में।
अब इस मामले की छानबीन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI कर रही है। शायद CBI की रिपोर्ट आने तक सच का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक सच तो मैंने खुद महसूस किया, जाटों में कोई खौफ नहीं था, भयभीत थे दलित समाज के लोग। जुबैर अहमद, BBC, डांगावास गांव, राजस्थान।
खेलों की दुनिया का रुख करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम कल बांग्लादेश पहुंच गई, जहां वो कल से पहला टेस्ट मैच खेलेगी। लेकिन वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर रहेगी सबकी नजरें, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने बात की वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली से।
जहाँ तक बल्लेबाजों का मैच आऊंगा, शिखर धवन अगर राहुल नहीं होंगे तो शिखर धवन तो खेलेंगे ही। मुरली विजय से तो आप क्या उम्मीद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने रन बनाए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा एस्टैब्लिश की है। और जहाँ तक विराट कोहली का सवाल है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि कितने गिफ्टेड प्लेयर हैं। पुजारा जरूर प्रेशर में होंगे क्योंकि पुजारा ने रन नहीं बनाए हैं। सुरेश रैना बाहर हो चुके हैं टीम से। आपने हरभजन की बात की, यस हरभजन डेफिनेटली प्रेशर में होंगे क्योंकि उनको जिस वजह से पिक किया गया है वो है उनका बॉलिंग रिदम। अगर अपने बॉलिंग रिदम उसी रिदम में बॉल डालेंगे तो बांग्लादेश को जरूर परेशान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक फास्ट बॉलर्स हैं, वो आपके पास एक रिलायबल आपके पास तिकड़ी है जो डिलीवर करेंगे ही करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा अगर आपको बांग्लादेश ने बैटिंग ट्रैक दे दिया। अगर आपको बैटिंग ट्रैक दे दिया फिर आपको सोच के क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वहां पे जो है वो बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो जाएगा टेस्ट मैच का। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, खास करके हरभजन, उनको भी मालूम है उनके लिए टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ये वापसी है और जिस भरोसे से सेलेक्टर्स ने उनको चांस दिया है वो चाहेंगे कि वो लेट डाउन ना करे, क्योंकि अगली सीरीज श्रीलंका फिर घर पे और साउथ अफ्रीका के साथ जो है उनको मालूम है कितना मायने रखती है। तो ये अगर उन्होंने इस मैच में अच्छा बॉल डाल दिया तो वो पूरा सीजन टीम में जगह पक्की कर देंगे।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली। और आइए एक बार फिर चलते हैं फैसल मोहम्मद अली के पास प्रमुख समाचारों के लिए।
BBC समाचार। इस्लामिक स्टेट ने इराक के शहर मोसूल में सरकारी हमलों से बचने के लिए धोखे से फट जाने वाले बम, खुफिया भूमिगत रास्तों और दूसरी रुकावटें पैदा कर रखी है। BBC की एक जांच में पता चला है कि शहर के नागरिकों के जीवन के हर पहलुओं पर उनका कब्जा है। जर्मनी में जारी G7 समूहों के देशों ने कहा है कि साल 2050 तक विद्युत की आपूर्ति के लिए या तो अक्षय या परमाणु ऊर्जा को ही मुख्य स्रोत बना लिया जाएगा। नेपाल के मुख्य राजनीतिक दलों ने तय किया है कि नए संविधान के अंदर मुल्क में संघीय व्यवस्था लागू की जाएगी और देश को 8 प्रांतों में बांटा जाएगा। उत्तरी बांग्लादेश के शहर सिलहट में पुलिस का कहना है कि उसने एक ब्लॉगर की हत्या के सिलसिले में एक स्थानीय फोटो जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में जेल अधिकारियों का कहना है कि शफकत हुसैन नाम के एक व्यक्ति की फांसी چوتھی بار ٹل گئی ہے۔ پھانسی دیے جانے کے کچھ گھنٹے پہلے ہی شفقت کے وکیل نے اسے پاکستانی سپریم کورٹ میں چنوتی دے دی تھی۔ بی بی سی سماچار۔
تو بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت کے اس انک میں اتنا ہی۔ اسٹوڈیو کی باگ ڈور تھی شاکر عالم کے ہاتھ۔ ایک گھنٹے بعد یعنی بھارتی سمے انوسار 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہونے والی ہے وشو بھارتی کاریکرم میں۔ تب تک کے لیے نتن شریواستو کو انومتی دیجیے۔